इप्सिता को अपनी पीठ पर किसी का हाथ लगा महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ी। अभिमन्यु को सामने देखकर वो दो कदम पीछे हटने लगी। तभी उसका गाउन उसके पैर में अटक गया। इप्सिता गिरने ही वाली थी कि अभिमन्यु ने झट से उसके पीछे हाथ रखकर उसे संभाला और बोला, संभल कर, हम हैं ना। अभिमन्यु, आप इस वक्त हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर पूछा। अपनी कमर पर अभिमन्यु का हाथ महसूस कर इप्सिता थोड़ी घबरा गई। वो झट से खड़ी हुई, अपना गाउन संभाला और पीछे मुड़ने लगी। अभिमन्यु ने इप्सिता के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोका और कहा, वो एक्चुअली इप्सिता, हम आपसे कुछ बात करने आए थे और तभी देखा कि आप शायद अपनी ड्रेस की जिप खोलने में परेशान थी, तो हमने बस आपकी मदद। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर नजरें झुकाते हुए पीछे हट रही थी। उसने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था, इसलिए उसे बहुत अटपटा लग रहा था। अभिमन्यु ने इप्सिता की भावना समझ ली और उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, एक्चुअली हम आपको माफी मांगने आए थे। उस पार्टी में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। हमें आपसे पूछे बिना किस नहीं करना चाहिए था, पर उस वक्त हमें कुछ समझ नहीं आया। उसके लिए मैं सच में माफी मांगता हूँ। इप्सिता ने अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, अभिमन्यु तेज कदमों से बाहर निकल गया। इप्सिता अभिमन्यु की माफी मांगते हुए देखकर थोड़ी निराश हुई। धीमी आवाज में उसने कहा, अगर अभिमन्यु ने मुझे किस कर ही लिया था तो फिर उन्हें इस वक्त आकर माफी मांगने की क्या जरूरत थी। अभिमन्यु के जाते ही इप्सिता का चेहरा उदास हो गया। वो शायद अभिमन्यु के इस अंदाज से निराश हुई थी। अभिमन्यु का इस तरह माफी मांगकर चली जाना इप्सिता को कहीं ना कहीं नाराज भी कर गया था, लेकिन उसने उस वक्त कुछ कहना ठीक नहीं समझा। अभिमन्यु के जाते ही वो कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट गई और अभिमन्यु के बारे में ही सोचने लगी। इप्सिता ने मन ही मन कहा, अभिमन्यु ने मुझे माफी मांगी है, क्या मुझे उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अवंतिका के बारे में कुछ नहीं बताया, क्या मुझे उनके पास जाकर पूछना चाहिए? इप्सिता के मन में कई सवाल थे, पर किसी का भी जवाब नहीं मिल रहा था। तभी उसे वो बात याद आई जब वो गाउन की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त अभिमन्यु आया और बिना कुछ बोले उसकी जिप खोल दी थी। ये याद करके इप्सिता को बहुत शर्म आई। उसने तकिए में अपना चेहरा छिपा लिया और पेट के बल लेट गई। अभिमन्यु का हाथ बहुत हल्के से ही उसकी पीठ को छुआ था, लेकिन उसे अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु का स्पर्श महसूस कर रही है। ये सोचकर उसने तकिए को कसकर पकड़ लिया, सीधा लेट गई और सीलिंग की ओर देखने लगी। वो बात याद आते ही इप्सिता ने खुद से पूछा, अभिमन्यु आखिर क्यों कर रहे हैं ये सब? अगर उन्हें माफी मांगनी ही थी तो फिर ये दूसरी गलती? क्या सच में सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे या कुछ और इरादे थे उनके? नहीं नहीं, ये सब मैं क्या सोच रही हूँ, अभिमन्यु सच में बस मेरी मदद ही कर रहे होंगे। हम भी नंदिनी के साथ रहकर बिगड़ गए हैं। ये सारी बातें उसके दिमाग में आ रही थी। पार्टी से लेकर घर आने तक जो कुछ भी हुआ वो सब उसे याद आ रहा था, इसी वजह से वो अभिमन्यु से बात नहीं कर पाई थी। लेकिन अभिमन्यु उसके कमरे में आकर माफी मांगकर चला गया, ये बात इप्सिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसका चेहरा फिर उदास हो गया और उसने खुद से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी लाइफ की पहली किस के लिए मुझे माफी भी सुननी पड़ेगी। ऐसी कोई बड़ी गलती भी तो नहीं की, आखिर अपने होने वाले पति को ही तो किस किया है। ये सब सोचते सोचते कुछ देर बाद उसे नींद आ गई, क्योंकि पार्टी की थकान उसे घेर रही थी। अगले दिन सुबह इप्सिता की आंख खुली तो देखा कि 10 बज चुके थे। इप्सिता उठी और बालों को समेटते हुए बोली, शायद कल की थकान की वजह से इतनी देर तक सोती रही। इप्सिता उठकर तैयार हुई और कमरे से बाहर निकली। उसने अभिमन्यु के कमरे की ओर देखा। तभी शांता काकी अभिमन्यु के कमरे से बाहर निकलते हुए इप्सिता की ओर देखकर बोली, क्या हुआ बहुरानी सा, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? कोरसा का इंतजार कर रही हैं क्या? इप्सिता इससे पहले जवाब दे पाती, शांता काकी ने खुद ही कहा, अरे आज कोरसा को जल्दी जाना था, इसलिए वे सुबह सुबह ही साइट पर चले गए। शांता काकी की बात सुनकर इप्सिता वापस अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी, क्या अभिमन्यु मुझसे बात नहीं करना चाहते? वो इस तरह बिना बताए कैसे चले गए? वे हमेशा बताकर ही जाते हैं। क्या वे कल के किस को लेकर इतने शर्मिंदा हो गए हैं कि अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते? इसीलिए वे बिना मिले बिना बात किए चुपचाप चले गए। मैंने सोचा था कि उनसे अवंतिका के बारे में पूछूंगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद अभिमन्यु मुझसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। इप्सिता अभिमन्यु के बारे में ही सोचती जा रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, अगर उन्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो फिर ठीक है, मैं क्यों बार बार उनके बारे में सोच रही हूँ? कोई ज़रूरत नहीं है। जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो फिर मैं क्यों उनके बारे में सोचूं? इप्सिता अपने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। फिर गहरी सांस लेते हुए बोली, मैं यहाँ एग्जाम के लिए आई थी और बेकार की बातें सोच रही हूँ। बेहतर होगा कि मैं एग्जाम की तैयारी में लग जाऊं, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुए हैं। इप्सिता ने अपना ध्यान अभिमन्यु से हटाने के लिए अपनी किताबें निकाली और नोट्स बनाने में लग गई। इप्सिता किताबें पलट रही थी, फिर किताबें किनारे रखते हुए बोली, मैं इतनी निराश क्यों महसूस कर रही हूँ? पढ़ने में भी मन नहीं लग रहा है। आखिर क्यों बार बार अभिमन्यु के बारे में सोच रही हूँ? और वो मुझसे बात करे या ना करे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे उनके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद वो शायद मुझसे बात ही नहीं करना चाहते होंगे, इसीलिए वे बिना बताए चले गए। इप्सिता को कल का किस याद आ गया। वो फिर से अभिमन्यु के बारे में सोचने लगी। इप्सिता ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ओ गॉड, मैं जितना खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ बार बार मेरा ध्यान अभिमन्यु की ओर ही जा रहा है। इप्सिता परेशान हो गई, वो उठकर खड़ी हुई। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगी। तभी उसकी नज़र नंदिनी के नंबर पर गई। उसने कहा, अरे हाँ, मैं नंदिनी को कैसे भूल गई? मैं उनसे बात कर सकती हूँ और उन्हें यहाँ बुला सकती हूँ। अगर वो यहाँ रहेगी तो शायद मैं अभिमन्यु के बारे में नहीं सोचूंगी। वो अगर यहाँ आ गई तो शायद हम साथ में आराम से पढ़ भी लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, मुझे नंदिनी को बुला लेना चाहिए। इप्सिता ने नंदिनी का नंबर डायल किया। नंदिनी ने 2 बजते ही कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो, क्या हुआ इशू? नंदिनी की आवाज सुनकर इप्सिता बोली, अभी तुम कहाँ हो और क्या कर रही हो? इप्सिता की आवाज में बेचैनी थी। उसकी आवाज सुनकर नंदिनी समझ गई कि इप्सिता परेशान है। उसने पूछा, क्या बात है इशू, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो? इप्सिता ने मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस अकेली बोर हो रही हूँ। प्लीज नंदिनी, क्या तुम यहाँ आ सकती हो मुझे कंपनी देने के लिए? नंदिनी ने हैरानी से पूछा, कंपनी देने के लिए? मैं वहां आऊँ? पागल हो गई है क्या तू? कल एग्जाम है और मैं नोट्स बना रही थी, बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अगर मैं अभी वहां आऊंगी तो पढ़ूंगी कब? इप्सिता ने कहा, यार एग्जाम मेरा भी है और तैयारी भी मुझे करनी है, लेकिन मैं यहाँ अकेली हूँ तो कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज आ जाओ ना, हम दोनों यहाँ साथ में पढ़ लेंगे। नंदिनी ने घड़ी देखते हुए कहा, यार 12 बजने वाले हैं, मैं अभी अगर निकलूंगी तो पता नहीं वहां तक आने में कितना टाइम लगेगा और इस वक्त ट्रैफिक भी मिलेगा। नंदिनी ने नाराजगी से कहा, अब तू बहाने बनाना बंद कर, ट्रैफिक की चिंता मत कर, तू रेडी हो जा, मैं ड्राइवर अंकल को बोल देती हूँ कि वे तुझे पिकअप करने आ जाएं, फिर मैं तुझे वापस भी पहुंचा दूंगी। अब तो ठीक है ना? प्लीज यार नंदिनी आ जाओ, मैं बहुत अकेली महसूस कर रही हूँ।
इप्सिता के अनुरोध पर नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, तो फिर जल्दी अपने ड्राइवर को भेजो, मैं थोड़ी देर में रेडी हो जाऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता खुश हो गई, थैंक यू सो मच। इतना कहकर इप्सिता ने कॉल काट दिया और कमरे से बाहर निकली। उसने देखा कि विला के बाहर एक कार खड़ी थी और ड्राइवर विला के दूसरे नौकर से बात कर रहा था। विला से बाहर निकलते हुए इप्सिता ने ड्राइवर से कहा, भैया क्या आप मेरे हॉस्टल जाकर मेरी फ्रेंड को ला सकते हैं? ड्राइवर ने तुरंत हाँ कर दी और नंदिनी को लेने के लिए चला गया। इप्सिता के जाने के बाद नंदिनी को मैसेज किया और हॉल में बैठकर नंदिनी के आने का इंतजार करने लगी। तभी उसने मन ही मन कहा, वैसे मिस्टर अभिमन्यु को अगर मुझसे बात नहीं करनी थी तो वे साफ साफ भी तो बोलकर जा सकते थे ना, इस तरह नजरें चुराने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है, हम दोनों एक दूसरे के इतने पास तो आ सकते हैं, लेकिन अभिमन्यु का व्यवहार देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद वे अभी भी हमारे रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर वे ऐसा ही चाहते हैं तो फिर यही सही। क्रमशः क्या सिर्फ अभिमन्यु की माफ़ी मांगने से इप्सिता इतनी परेशान हो रही है? क्या वो अपने एग्जाम की तैयारी कर पाएगी? क्या वो नंदिनी को ये सब बताएगी? क्या नंदिनी उसकी मदद करेगी? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। और अब तक की कहानी कैसी लगी?